हम लोग भगवान को भूल कर जरा इधर में हमको समय दीजिए बात, और आप इधर में आइए, इधर है, इधर में बैठिए, इधर। महाराज जी ने बतलाया जो हम लोग भगवान को भूलकर इस जगत में आए हुए हैं, जगत एक जेल खाना है। भगवान के निकट में दोष अपराध करने पर महामाया जीव को पकड़कर इसको इस जगत में फेंकती है। हम लोग इस संसार को आरामदायक और सब प्रकार से सुख और सुविधाजनक बनाना चाहते हैं, किंतु जेलखाना को क्या बनाएंगे सुख का? वहां तो अपराधों का दंड मिलता है ना, इसलिए वहां पर किसी को सुख और चैन से नहीं बैठने देते। ऐसे इस जगत में माया चाहे लाख उपाय करो वो तुम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए सद्गुरु का पदाश्रय कर अपने को पहचानो और कृष्ण को पहचानो और उनका भजन करो। बिना सद्गुरु के भाई भजन नहीं होता, असंभव है। इसलिए सद्गुरु का आश्रय करो। सद्गुरु का लक्षण क्या है? इन्होंने बतलाया समस्त शास्त्रों में पारंगत हो और भगवान की अनुभूति हो। जिसको भगवान के चरणों में श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति और अंत में रति नहीं हो गई है, जिनको रति नहीं है, ऐसे गुरु जो बनते हैं वो चेला के साथ में दोनों नरक में डूब करके मरते हैं, भोगों में लिप्त हो जाते हैं, आचरण से भ्रष्ट हो जाते हैं, रुपए पैसे में फिर मिल जाते हैं। इसलिए सद्गुरु विषयों से अनासक्त हो, विषयों में अनासक्त हो और भगवान के भजन की अनुभूति उनमें कुछ हो गई हो। और शब्द शास्त्र अर्थात वेद उपनिषद शास्त्र श्रुति स्मृति भागवत गीता रामायण इनका ज्ञान हो। यदि संपूर्ण रूप से उनका ज्ञान हो वेद शास्त्रों का तो अभी गुरु मत बनाओ। यदि भगवत उपलब्धि नहीं है और भगवत भजन नहीं करता आता तो ऐसे गुरु को जो कि शास्त्र पढ़ करके याद रखे हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं और अपने भजन नहीं करते तो दो दिन के बाद में वो गिर जाएंगे और फिर तुमको बड़ा अफसोस होगा। इसलिए ऐसे गुरु को मत बनाओ। सब लक्षण देखो, एक बरस दो बरस तीन बरस तक मत करो, पहले देख लो जो गुरु ठीक है कि नहीं। जब देखो जो शास्त्र ज्ञान में ठीक है हमारी समस्त शंकाओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ में भगवत भजन का बल जिनमें है और संसार से परम विरक्त है, निष्किंचन अकिंचन है, तो उनको गुरु बनाओ। दो चार वर्ष तक उनके पास में रहो, उनके चरित्र को देखो, और नहीं तो कुछ दिनों के बाद में चेला गुरु का विरोधी बन जाता है। देखता है जो गुरु जी ने 10-20 लाख रुपया जमा लिया है और हम लोगों को तो कुछ देते नहीं। कहा जाए गुरु जी इसका हिस्सा हम लोगों को भी चाहिए, और गुरु जी पर तलवार चलाते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं, और एक गुरु को छोड़कर फिर दूसरी गुरु कर लेते हैं और परस्पर लड़ते हैं। वो गुरु दूसरों का सम्मान नहीं देता इसलिए बेकार का हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं, सद्गुरु समझ बुझ करके, विशेष करके रति जिनको हो गई है, जिनको संसार में फंसने की और संभावना नहीं है, ऐसे सद्गुरु को करके भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने के लिए इन्होंने बतलाया जो गुरु रूप गोस्वामी का अनुगत नहीं है उसको गुरु मत बनाओ। गुरु किसको बनाओ? जो रूप गोस्वामी के जितने उपदेश हैं उनका पालन करते हैं, उपदेशामृत को पढ़े हुए हैं। बाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, इसको दमन कर लिए हों, अत्याहार प्यास शस्य को ठीक रखे हों, ददाति प्रतिग्रहणाति इत्यादि हो, वैष्णव को सम्मान करने वाले हों, हरिनाम में रुचि उत्पन्न हो गई है और ब्रज में रह करके ब्रज के भावों के अनुसार में वैष्णव के अनुगत्य में रहकर निरंतर कृष्ण नाम का स्मरण और कीर्तन करते हैं, ऐसा गुरु हो तो भगवान के चरणों में रुचि होगी, अन्यथा नहीं होगी भाई। तब फिर हम लोग रूप गोस्वामी के और वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति इसके विषय में जानेंगे। और फिर वैदिक भक्ति करते करते सौभाग्य से यदि किसी रसिक वैष्णव का संग हो गया तो हम लोग रागानुगा भक्ति की तरफ में प्रवेश कर महाप्रभु जी के उपदेशों के अनुसार रूप और रघुनाथ हमारे गोस्वामी लोगों के उपदेश के अनुसार में भजन कर सके, अन्यथा जीवन बर्बाद हो जाए। पहले महाराज जी ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश बतलाया किंतु बंगला में बोले, आप लोग नहीं समझ सके इसलिए हिंदी में मैंने बोल दिया। अब ये विष्णु महाराज जी हैं, ये कुछ ये उड़िया के पारंगत और बहुत ही विद्वान आदमी हैं, उड़िया में भी बोल सकते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो ये बंगला में हिंदी में ही बोले तो अच्छा है, जो सब लोग थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी भाषा भी बोलेंगे तो समझ जाएंगे। 15 मिनट ये भी बोलिए, हम लोगों के बीच में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य और सभापति श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सुनाई नहीं पड़ रहा है? नहीं, अभी हाल में कुछ दिन पहले ये अमेरिका के बहुत से जगहों में कनाडा में सिंगापुर में और बहुत से देशों में ये प्रचार के लिए गए थे, चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी को प्रचार करने गए थे। मैं भी उस समय में अमेरिका में ही था किंतु दुर्भाग्यवश हम लोगों का भेद परस्पर नहीं हुई। यहाँ भारतवर्ष में आसाम पंजाब बंगाल हैदराबाद इत्यादि समस्त भारतवर्ष में ये प्रचार करते हैं सिद्धा भक्ति का, महाप्रभु जी का वाणी का। फुर्सत तो इनको नहीं थी किंतु वैष्णव के आह्वान को अस्वीकार कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम लोगों के आह्वान को अस्वीकार नहीं कर सके, बहुत से जगहों से वहाँ पर आए हैं श्रोतालु पंजाब इत्यादि से, फिर भी हम लोगों के लिए थोड़ा सा समय निकाल करके आए हैं। मैं तो रोज़ अपनी डफली बजाता हूँ, अभी स्वामी जी की महाराज जी की बातें सुने, हम लोग का प्रसंग चल रहा था रसिक चूड़ामणि शिलारूप गोस्वामी के अप्राकृत वैशिष्ट और उनकी शिक्षाओं का वैशिष्ट, इसके ऊपर में विचार चल रहा था। पिछले कल वृंदावन के बहुत से बड़े बड़े विद्वत वरेण्य लोग यहाँ पर उपस्थित थे, बहुत सी बातें हुई रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के संबंध में, उनके जीवन के वैशिष्ट के संबंध में। कुछ लोगों ने कहा कि यदि गौड़ीय वैष्णव नहीं होते आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य प्रशिष्य नहीं होते तो आज गौड़ीय वैष्णवों का जहाज डूब चुका था। दूसरे दूसरे संप्रदाय के लोग गौड़ीय वैष्णव को अत्यंत हीन दृष्टि से देखते हैं, इनमें परस्पर कोई एकता नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं है, विद्वान भी नहीं है, किंतु गौड़ीय वैष्णव ने ही श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य प्रशिष्यों ने गौड़ीय वैष्णव की ध्वजा केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष से बाहर सारे विश्व में इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वाणी का सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं और कर रहे हैं अभी भी। किंतु थोड़ी सी त्रुटि ये दिखलाई कि हम लोगों की वैष्णव की तिथि, वैष्णव की तिथि जैसे रूप गोस्वामी की विरह तिथि, एक दिन में हम पालन नहीं कर, कोई कल करा, कोई आज कर रहा, कोई कुछ कोई कुछ, यदि सभी मिलकर वैष्णव तिथि जन्माष्टमी इत्यादि हमारे वैष्णव जो उपवास और उत्सव इत्यादि के दिन हैं एक दिन निर्धारित किया जाता और कभी कभी सब लोग मिल करके हम लोग विचार करते कि हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती की धारा को या चैतन्य महाप्रभु के जितने मानने वाले लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होकर के विचार करें कि कैसे हम लोग रूप रघुनाथ और रूप सनातन गोस्वामी की धारा को संरक्षित अच्छी तरह से कर सकते हैं और अच्छी तरह से हम प्रचार कर सकते हैं। वास्तव में यह शोचनीय बात है कि हमारा अभी सारस्वत गौड़ीय वैष्णव जो विचारधारा के अभी लोग हैं प्रचार कर रहे हैं ठीक है, किंतु यदि एक मुखी होकर के हम लोग प्रचार करते, एक तरह की पंजिकाएँ होती, व्रतालिकाएँ होती, एक तरह से हम लोग मिलजुल करके चलते, तो आज विश्व में गौड़ीय वैष्णव का जितना प्रचार था और विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की कि भविष्यत में केवल एक ही संप्रदाय रहेगा और वो चैतन्य महाप्रभु का विचारधारा वही संप्रदाय रहेगा और सारे सब समाप्त हो जाएंगे, वास्तविक में यह बात ठीक हो जाएगी। इसलिए हम लोग यदि मिलजुल कर यदि नहीं रहेंगे तो आजकल जैसे देखा जाता है मायापुर की अवस्था बड़ी शोचनीय और भी कि बड़ी शोचनीय दशा है, परस्पर लड़ाई विवाद इत्यादि में हम लोग प्रचार कहाँ कर सकते, कहाँ हम चैतन्य महाप्रभु की वाणी के दियों तृणादपि सुनेज के लिए महाप्रभु जी ने कहा। और यदि हम ही लोग सब लड़ेंगे, शिष्य गुरु से लड़ेगा तो तब फिर क्या होगा। इसलिए दीपक के नीचे अंधकार रहता वैसी नहीं हो जाए, मिलजुल करके हम लोग प्रचार करें, वैसा आदर्श से रहें, वैष्णव को सम्मान देना सीखें, तब तो हम लोग उनका प्रचार कर सकते हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, अभी आप लोग महाराज जी के मुख से ये सब कुछ रूप गोस्वामी का वैशिष्ट और हमको किस प्रकार से अपने जीवन धारा को लेकर चलना पड़ेगा जो हम लोग भजन कर सकें और रूप रघुनाथ जी के विचारों को हमारे श्री भक्ति सिद्धांत और सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर और इसके बाद में हमारे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद शिष्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद भक्ति दैत माधव महाराज, पूज्यपाद परम पूज्यपाद शिष्य श्रीधर गोस्वामी महाराज इत्यादि जो हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं, उन सबका आचरण करते हुए उनके अनुगत्य में हम लोग विश्व में फिर से चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी का डंका यदि हम उत्तोलन कर सकें तब तो हमारा कल्याण हो सकता है।
साध हरितेन समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भवतये साध्वी किन्तु प्रभर्जा प्रियये बतश वन्दे गुरुश्री चरणारविन्द वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेभ्यश्च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः। शंकरसनकारनतयसाय गर्भदशाय च पायाब्धिशाय शेषश्च जशांशकला सन्नितानन्दखरामो शरणं ममास्तु। नमः महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंध जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। वंदे नंद ब्रज स्त्रीनां पादरेणुमभीक्ष्णसं यासां।
एक दफे आए थे यहाँ पर, इस वक्त भाषण देने के लिए मौका नहीं हुआ, प्रसाद से मिलने आए थे। भगवान की इच्छा होती है तब वही काम बनती है। भगवान की इच्छा से जो होती है मंगल के लिए। अभी यहां पर आएंगे इसे चिंता नहीं किया, लेकिन मंगलमय शिविर की इच्छा है। वहां पर हमारा शुभ प्रार्थना करते हैं वैष्णव तदनिष्ठाम पूज्यवत तदनिष्ठ भक्ति वेदांत नारायण महाराज आए मथुरा में, इनका संग में रहने के लिए थोड़ा दिन मुझे मौका मिला, याद है। वहां जाओ, वैष्णव का दर्शन करो, वैष्णव की सेवा करो, वैष्णव के मुखार से भगवान की कथा सुनो, तुम्हारा मंगल होगा। इसलिए भगवान इनके ऊपर प्रेरणा दिया। मैं तो वैष्णव का दर्शन करने के लिए नहीं चाहता हूँ, संग करने के लिए नहीं चाहता हूँ, इससे मेरा मंगल नहीं होता है। इसलिए भगवान इनके ऊपर प्रेरणा दिया, उन्होंने भेजा यहाँ पर प्रसाद पाने होगा। काल मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ पर पूरी महाराज रोक दिया। हमारा पूरी महाराज यहाँ पर पंजाब से और जगह से बहुत भक्त लोग आए हैं। जो समय में यहाँ फंक्शन है वही समय में हमारा वहाँ भी फंक्शन है। यहाँ से आपको जाने को नहीं देंगे, ठीक है, भगवान की मर्जी। इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, भगवान जो करते मंगल के लिए। मेरी भी इच्छा थी इनसे मिलने के लिए, इनका भी इच्छा थी, मेरा पास खबर आते हैं महाराज आपसे मिलने के लिए चाहते हैं अमेरिका में। मैं भी इच्छा किया, भगवान की इच्छा नहीं, कहाँ पर मैं घूमता हूँ कहाँ पर उन्होंने घूमता है मालूम ही नहीं है, मुलाकात नहीं हुआ। बहुत बड़ा अमेरिका है, कहाँ ऑरलैंडो कहाँ मियामी कहाँ कहाँ चला गया, वो पहले से फिक्स्ड प्रोग्राम है ना, उसको तो बंद नहीं कर सकते। इसलिए इनका दर्शन अमेरिका में मिला नहीं, इनका भी इच्छा थी लेकिन उनका भी इच्छा पूर्ति नहीं, जो भगवान की मर्जी है ठीक है। लेकिन यहाँ पर वृंदावन आके इनका पापक संदेह में आने के लिए मौका मिल गया, ले आया भगवान जबरदस्ती जाओ। अभी रूप शिक्षा के बारे में काल रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि गया, हम लोग संकीर्तन का साथ राजा दामोदर मंदिर में वहां पर गए थे, हम लोगों को देखा नहीं,
हम लोग पहले चले।
ओह अच्छा, उसके बाद बारिश आ गया,
6:30 बजे हम लोग गए, 8 बजे
हम लोग वहां से 8 बजे शायद निकला। वहां पर जब पहुंचा सिरूप मंजूरी पद ज्ञान प्रेमगन कीर्तन हुआ, धरने के साथ साथ बारिश शुरू हो गया। भगवान की इच्छा नहीं है जो भगवान रूप गोष के बारे में बोले। फिर वहाँ मंदिर में आया, वहाँ पर भाषण हो रहा है भगवत वाचन, वहाँ पर भी मौका नहीं मिला। फिर श्यामानंद प्रभु का जो स्थान है अदर श्याम सुंदर मंदिर, वहाँ पर जाके कुछ मौका मिला, बारिश से थोड़ा रोक दिया। लेकिन शाम का वक़्त गुरु पुरुष का शिक्षा के बारे में कुछ याद करने के लिए कोशिश किया, वो तो बहुत लंबा चौड़ा शिक्षा है, दोबारा ही कहना मुश्किल है, बहुत जरूरी है, उसका विश्लेषण करके समझने के लिए कोशिश किया। इसलिए हमारा गुरु महाराज जी की आज्ञा है, जहाँ तुम जाओगे गुरु जी का मुखार में जो बात तुम सुने हो, शुद्ध भक्त का मुख में जो बात तुम सुने हो, जो शास्त्र की वाणी है विशेष से भागवत की जो वाणी है उसको कीर्तन करो। कीर्तन करने से तुम्हारा दिल साफ होगा, भगवान में भक्ति होगी। इसलिए जहाँ हम जाते हैं कोशिश करते हैं, जब भी भाषा के ऊपर अधिकार नहीं है, हिंदी का ऊपर अधिकार नहीं है, इंग्लिश का भी अधिकार नहीं है, तब भी गुरु जी का आज्ञा पालन करने के लिए जहाँ हम जाते हैं वही आज्ञा पालन करने के लिए कोशिश करते हैं। सिर्फ जो बात वहाँ कहने के लिए मुझे मौका नहीं मिला, उस विषय में मैं याद करूँगा। रूप गोस्वामी का शिक्षा उपदेशामृत में है। रूप गोस्वामी जो वस्तु देने के लिए आया है वो आखिर में बतलाया है, लेकिन पहले होशियारी कर दिया। इसलिए हमारा परम गुरु जी विश्वव्यापी जी चैतन्य मठ गौरी मठ समय के प्रतिष्ठाता मित्र विश्व विष्णु अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज उपदेशामृत का जो उपदेश है, तथा कोई सहजिया लोग उसको जम का माध्यम डरते हैं, जम ऐसे बोला क्यों, पहले आरंभ किया कहां से, आखिर में राधा रानी के बारे में कहा राधा राधा कुंडो, लेकिन उसमें भी होशियारी कर दिया, पहले शुरू किया वाच बेगम मनस क्रोध बेगम जीभा बेगम उदरोपस्त बेगम एतान बेगान जो विषय धीर सर्वम इमां प्रतिविंश शिष्या, मुश्किल है, पहले वार्निंग दे दिया। जो विषय देने के लिए मैं आया हूँ चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का ही अभिन्न स्वरूप है प्रभु गोस्वामी, उसके लिए पहले फाउंडेशन क्या है, बाच बेगम जवान का बेग वेग समझता है कि नहीं, वेग शब्द हिंदी में बोलता है कि नहीं, जवान का जो वेग है उसको रोकना चाहिए, जो मुख में आया बोल दिया। भगवान की कथा छोड़ के और कथा जितना है उसको वाक्य को वेग कहते हैं। ग्राम्य कथा क्या है वो हमारा प्रभु बहुत व्याख्या किया है। वही ग्राम्य कथा में ग्राम्य कथा नावली में ग्राम्य कथा नाशन में जो है जो रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला उसको व्याख्या किया। जो श्री पुरुष घटित कथा वो तो ग्राम्य कथा है ही, ऐसा कि कर्म का बारे में योग का बारे में ज्ञान के बारे में जो कथा है वो भी ग्राम्य कथा है, जिससे भगवान की भक्ति छोड़ के और तरफ ध्यान चला जाता है उस सारा ही अमंगल है, ठीक नहीं है। कि बाच बेगम कृष्ण प्रीति के लिए कृष्ण की कथा छोड़कर और जितना किस्म की कथा है सभी वाक्य वेग है। जो वाक्य वेग रहे आखिर में जो है श्री कृष्ण उच्च पुण्य वसती प्रेय से विराधा कुंडन जसमणिद्री के वो बधाई जत प्रेम पेशर अलस असुलम किंग पुनः भक्ति भाजन। वो जो राधा प्रेम सर्वोत्तम है जो उन्नत उज्ज्वल देने के लिए आया है, गोपी का अंदर श्रेष्ठ राधा रानी है जिसका अभिन्न है राधा कुंड। नारदादी जो प्रेमिक भाई भक्त है उनके लिए भी दुर्लभ है, और जो साधन भजन में प्रवेश किया उनको बात क्या कहेंगे, आखिर भी होशियार कर दिया। जब प्रेष्ठ वालम असूलम किंग पुनर्भक्ति भाजन तत्प्रेम सक्रिय स्नातुर आविष्कार। एक दफे राधा कुंड स्नान करने से वहां स्थान मिलता है, राधा कुंड दर्शन हुआ। हमारा परम गुरु जी के बारे में हमारा गुरु जी के मुखारविंद से आओ परम पूज्यवाद केशव गोश्री महाराज हमारा शिक्षा गुरु, परम पूज्यवाद श्रीधर देव श्री महाराज शिक्षा गुरु, पहले तो सबका सुनने के लिए मौका मिला। राधा कुंड वहां पर हमारा परम गुरु जी स्थूल रूप से आस्थान नहीं किया, राधा कुंड को साक्षात राधा रानी देखा, कैसे पैर घुसाएंगे, राधा कुंड तो राधा रानी है, इसलिए हम लोग जाके डुबकी लगाते। लेकिन हमारा परम गुरु जी दूर से पानी लेके अप्राकृत भूमि है, अप्राकृत का मतलब पराकष्ट है, हमारा ये प्राकृतिक शरीर लेके ब्रजमंडल में प्रवेश ही नहीं होता है। ये ब्रजमंडल का ये दुनिया में इसका आविर्भाव है अवतरण है, ये ईवी का हिस्सा वृंदावन नहीं है, उनका अवतरण है, सदा सिद्ध वस्तु है, और उसका अंदर में राधा कुंड सर्वोत्तम है। ये तो आप लोग है बहुत दबे वैकुंठ जनित बरा मधुबिर तबिरास वृंदारण्य उदरमी गोवर्धन राजकुंड गोकुल पद प्रेमामृत प्लावना वहां पर बोल दिया। वही राधाकुंड सर्वोत्तम अप्राकृत भूमि है, चिन्मय भूमि है। जब हम वही भूमि में अवस्था में प्रवेश नहीं करे तो कैसे वहां पर स्नान होगा, स्नान करने से वही स्थान पर मिलता है, ठीक बात है, लेकिन राधा कुंड दर्शन हुआ। और जो भूमिका में स्नान होता है वही स्वरूप में पहुंचा, इसलिए कहते यहां पर जो भजन करने के लिए प्रवेश किया उनका बात तो छोड़ दीजिए, ऐसा कि अनंत भक्त जो नारदादि के लिए भी दुर्लभ है उसके लिए पहले बताया तुम्हारा जवान का वेग दमन हुआ कि नहीं, वाक्य वेग मनोवेग मन का इतर वेग इतर चिंता करने के लिए वेग, भोग की प्रवृत्ति जितना किस्म का है, कर्म ज्ञान योग इत्यादि, दुनिया में भोग, मरने के बाद स्वर्ग आदि भोग, मुक्ति के लिए, सिद्धि के लिए और भगवत वेद निषिद्ध भोगाभिलाष, ये जब रहे वो बात छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की बात। पहले इसको देखो, हमारा भक्ति ठाकुर लिखा है, जो संसार त्याग करते हैं उनका सर्वेक जय हो गया है, ये पहले उसके लिए ही उपदेश नहीं है, ये गृहस्थ के लिए उपदेश है। उनका हो गया तो वो संसार छोड़ सकते, लेकिन हमारा प्रभुपाद मेरा माफी का आदमी जो हमारा गुरु जी जो काम क्रोध लोभ मोह का दीपो है, उनको मठ में किस लिए रखा? हमारा गुरु जी का मुखर से सुना इसलिए हमारा परम गुरु जी कोशिश किया, तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह है ठीक है, इसको दबाने के लिए तुम कोशिश करोगे सारा जिंदगी चला जाएगा, हजारों जिंदगी, जरूरत नहीं, जो है तुम आ जाओ, तुम्हारा जो श्रद्धा है आ जाओ, हमारा यहाँ पर रहो, हरिकथा श्रवण कीर्तन करो, हरिभक्ति अनुशीलन करो, सदाचार में रहो, जब जरा से वही कृष्ण ब्रह्म का भू भी मिल जाएगा सारा संसार नाश हो जाएगा। हमारा प्रभुपाद की ऐसा इच्छा थी, जब वो घर में रह के कोई और स्थान पर रह के त्यागी होकर इंद्र को दबा भी दे, तब भी खतरा है, ये प्राकृत इंद्र का कारण चिन्मय इंद्रिय है, चिन्द्र इंद्र का विषय अप्राकृत मदन मोहन है, जब तक अप्राकृत मदन मोहन का आस्वादन नहीं होगा तब तक डर रहेगा। इसलिए आप लोग गीता जी का भक्ति ठाकुर के व्याख्या उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, विषाभि निबंध निराहार सदेन रहवर्जन सप्रश्व परम दृष्ट निबंध, देख लीजिए, महामूर्ख है जो समझते इंद्र को दबा के हम उसको अपना हिम्मत से दबा सकता है, नहीं, जब तक श्रेष्ठ राष्ट्र नहीं मिले नहीं दबा सकते, ये बात अच्छी तरह से वहां पर भक्त मुंटा कर बता दिया। इसलिए बजकवेग मनोवेग क्रोधवेग, काम रहने से क्रोध होगा, असंकल्प जयत काम क्रोध काम विवर्जनात कामत क्रोध भी जायत, वाच बेगम मनस क्रोध बेगम जीभा बेगम, अच्छे से चीज खा लिया जीभा बेग जब हो जाएगा इंद्रिय बेग होगा उपस्थ बेग भी आ जाएगा, जीभा बेग का संबंध है, जो जीभा बेग को जय किया वो सारा इंद्र को जय किया, ऐसे भी लिखा उधर उपस्थ बेगम एतन बेगम जो विषय धीरे धर्मांग सर्वांग शिक्षा उपस्थ बेग सबको जब दमन कर सके वो सारा दुनिया को शासन कर सकता है, इसका जो व्याख्या किया है हमारा प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर उपदेशामृत में, वो पढ़ के लीजिए, यहाँ पर कहने के लिए समय नहीं है, हम लोग कार्तिक व्रत में इसका विस्तृत रूप से आलोचना करते हैं, एक एक बात जो बात बोला ना, पहले फाउंडेशन ही नहीं आए पहले हम वही प्रेम की बात कहते क्या समझेंगे। इसलिए तथा कोई सहज जो है वो लोग उपदेशामृत का जम का मा भी डरते हैं, जम है पहले डंडा मार दिया, इसलिए जब शुद्ध भक्त का संग हो जाए तो मेरा अंदर भी यही ज्ञान होगा मैं कृष्ण का हूं, न तो जगमंडाजन पिये तो तपाया दिवी यथा कृष्ण अपित प्राण तत्पुरुष निषेवाया, षष्ठ स्कंद में प्रायश्चित प्रसंग में बोला, कर्मकांड ज्ञानकांड प्रायश्चित भक्ति प्रायश्चित में जो किया वहां पर बोला, हे परीक्षित महाराज पापिष्ठ व्यक्ति तद्रुप पवित्र नहीं हो सकता है कर्मकांड ज्ञानकांड प्रायश्चित द्वारा तपस्या ब्रह्मचर्य द्वारा, जैसा होता है कृष्ण में अर्पित होने से, कृष्णाप्रीत प्राप्त कथम सत तत्पुरुष निषेवाया, भगवान का नियोजन शरणागत भक्त का परिचर्य द्वारा माय कृष्ण का हुए ज्ञान आएगा, जब कृष्ण का माय हो जाऊंगा तो कृष्ण के लिए जो कुछ करूंगा वो भक्ति है, मैं दुनिया का हूं जो कुछ भक्ति करूंगा उसका फल दुनिया में आ जाए, यही बात तो वहां पर तो सुपर शिक्षा में आए, तो तुम्हें उपसगर करो ये छेदन तो मूल सगे मारी जाए वृंदावन, बहुत किस्म का अभांतर मतलब आ जाते ना, गुरु जी के पास तो मंत्र लेने के बाद बोल देते हम भक्ति के लिए मंत्र ले रहा है, लेकिन बाद में पहले का संस्कार से बहुत कुछ आ जाता है। भुक्ति मुक्ति वंचा असंख्य तार लेखा जिद्धारकुटी नदी जीव हिंस इत्यादि वहां पर लाभ पूजा प्रतिष्ठा सब आ जाए, एकदम विश्लेषण करके प्रभुपाद लिखा दिया। बाप वही मुझे ही करने होगा, जो साधक है उनको ही बीज को रोपण करने पर का श्रद्धा युक्त हृदय में और उनको ही पानी देने पर का श्रवण कीर्तन जो और उनको ही पेड़ को घेराव करने पड़ेगा जिसे पगला हाथी वैष्णव अपराध नहीं हो जाए और अवान्तर मतलब नहीं आ जाए और उनको ही उसको काटने पड़ेगा। धान घास के पास और धान पेड़ के बाद और पेड़ निकालता नहीं उसका क्या बोलता है, उसको नहीं काटने से धान को रस नहीं मिलता है। इसलिए प्रथम ही पोषाकार करे छेदन मूल सके बर जाए वृंदावन। इसलिए जो उपदेशामृत मेरे भगवान ने शिक्षा दिया आखिरी में हर एक श्लोक के बारे में चिंता कीजिए, एक एक अत्याहार प्रयास प्रजल को नियम आग्रह जरा संघर्ष लोलन सभी भक्ति उत्साह निश्चित इत्यादि एकदम एक एक श्लोक चिंता करिए तब आखिर में ही प्रेम मिलेगा। और आखिर में भी बोल दिया कर्मी परि तो हर एक पर व्यक्ति जो दुर्ज्ञानी रहा तेव्य ज्ञान मुक्त भक्ति प्रवाह प्रेम ततः तेव्य पशुपल विशाराधिक पृष्ठा तद्वत कृति कर्मी से ज्ञानी ज्ञानी से जो नारायण का भक्त है चतुष्वन ज्ञान छोड़ दिया उससे धरदादी उससे और जो शक्कर रस का भक्त मत्स्य रस का भक्त वो बीच में बोला नहीं। फिर जो कांत रहती है उसका अंदर में गोपी का अंदर में राधा रानी सृष्ट है उसका अभिन्न राधा कुंज है वहां पर भी बतला दिया जो कि जाए
कृष्णाय कृष्ण पदभक्ताय नमो वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो महाबुदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददातिष्ठम् आद्दानस्तेन दन्तैरीतं जाचे श्रीमदरूपदं श्यां जन्म जन्म मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद सुष्म भक्तिप्रज्ञान किशोर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में सत्सत्कार वंदना कर तत्पश्चात पूज्यपाद सुष्म भक्ति वल्लभ पुत्र महाराज जी वैष्णव बनी सज्जन मंडली वैष्णव आज तीन चार दिनों से श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा के संबंध में यहाँ पर गोष्ठी संगोष्ठी चल रही है। बहुत से बड़े बड़े विद्वान उनके अपराकृत चरित्र के संबंध में बोले हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर उनके उपदेश। समय करीब करीब तब समाप्त हो चुका है, अभी भोग भी लग चुका है, वैष्णव के सेवा में विलंब हो जाएगा और हम लोग तो रोज ही बोलते हैं। मैं केवल दो एक बातें आप लोगों के सामने बतला कर वक्तव्य समाप्त करूंगा। अभी इसके बाद ही में आरती होगी फिर प्रसाद सेवा होगी। अभी महाराज जी ने श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों के संबंध में कुछ बतलाया है, विशेष करके उपदेशामृत का प्रथम द्वितीय तृतीय इत्यादि श्लोक के संबंध में भी उन्होंने स्पर्श किया। वास्तविक में रूप गोस्वामी के ये सब श्लोक, ये सब उपदेश भक्ति राज्य के सुदृढ़ नींव है या प्लेटफॉर्म। इन्होंने यह भी बतलाया, जैसे भक्त विनोद ठाकुर जी ने प्रभुपाद ने बतलाया, ये उपदेश गृहस्थों के लिए हैं। क्यों गृहस्थों के लिए हैं? क्योंकि गृहस्थ जीवन में ही ये सारे उपदेश पालन कर और तब फिर विरक्त होकर के नवद्वीप धाम में, वृंदावन धाम में अथवा कृष्ण की लीला स्थलियों में वो भजन करेंगे। इसलिए उनमें तो पराकाष्ठा रूप से ये सभी चीजें होनी चाहिए, इसलिए उन लोगों के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए ही अपने जीवन में अच्छी तरह से पालन करेंगे और इसमें प्रतिष्ठित होने के बाद में तब त्यागमय निष्किंचन जीवन वो व्यतीत करते हुए भगवान का भजन करेंगे। इसलिए उन लोगों के लिए ये सब के पालन करना जरूरी। किंतु एक बात और है, इस जगत में तरह तरह के साधक हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जिनकी अभी सुकृति नहीं हो रही हो, पूर्व जन्म की का संस्कार भजन का नहीं, नए रूप में उनके संस्कार हो रहे हैं या थोड़ी सी पूर्व जन्म की सुकृति हो और इस जन्म में आए हैं, भजन कर रहे हैं, आरंभ किया है, उनके लिए तो ये सब अक्षरशः पालन करने योग्य हैं। किंतु जिन लोगों का पूर्व जन्म का भक्ति का संस्कार है और भजन करते 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 श्रद्धा अनर्थ दूरीकरण हो गया, इसके बाद में भजन में निष्ठा हुई, प्रगाढ़ निष्ठा होने के बाद में, परिपक्व निष्ठा होने के बाद में उसकी रुचि हुई और रुचि भी वैशिष्ट अनापेक्षणी और वैशिष्ट वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी, इन अवस्थाओं को पार कर जिसकी रुचि प्रगाढ़ रूप से भगवान के भजन के प्रति सुदृढ़ हो चुकी है और वही परिपक्व होने पर भजन से भजनीय के प्रति हो गई, यहां तक पहुंच गया है और इनका पालन कर चुका है, ऐसे भी तो भक्त लोग हो सकते हैं। जगत तो खाली शून्य तो रहेगा नहीं, हो सकता है जो उत्तम अधिकारी भी भक्त हों, जैसे श्रील प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी के परिकर लोग आए। इसलिए हम लोगों को ये सब पालन करना चाहिए, किंतु जीवन में हम लोगों को भजन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण के साथ में हमारा क्या संबंध है, यह निर्णय होना चाहिए। जब तक हम लोगों का भजन का उद्देश्य क्या है, एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द भजन क्या हमारा है, स्थिर नहीं हो गया, क्या भजन करेगा कोई, संबंध ज्ञानी नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को एक अनिष्ट शब्द ब्रह्म में निष्णात और भजन में परिपक्व भगवत उपलब्धि युक्त संसार से निवृत्त अनासक्त महात्मा हूं विशेष करके बतलाए हैं जी गोस्वामी जी ने, जिनको रति उत्पन्न हो गई है, ऐसे लोग शुद्ध गुरु हैं, इनके आश्रय में यदि भजन किया जाए तो हम लोग भजन में उन्नत हो सकते हैं।
आजकल देखते हैं हम लोग चेला तो मिलते हैं, शिष्य मिलते हैं, किंतु गुरु ऐसे लक्षणों से युक्त मिलना बड़ा भारी कठिन होता है। कुछ दिन में बाद में गुरु च्युत हो जाते हैं और शिष्य का सारा जीवन चौपट हो जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी के इन प्रारंभिक उपदेशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तत्पश्चात संक्षेप में यही कहना चाहते हैं, सभी लोग रूपानु क्यों कहना चाहते हैं, अपने गुरु को रूपानु क्यों कहते हैं? रूपानु गुरु वर्ग कीजिए। आकांक्षा तो होगी जानने की, लालसा तो एक तो होनी है, रूपानुग क्या है, रागानुगा कौन क्या है। अंततः भजन करते करते कुछ दिनों के बाद में आदमी मध्यम अधिकार में तो आएगा कभी, आखिर सब समय कनिष्ठ अधिकारी में ही रहेगा। हमने सुना है श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, मैंने किसी को गुरु शिष्य नहीं बनाया, मैं किसी को शिष्य नहीं करता, मैं गुरु बनाता हूं। और सबको प्रणाम करते थे। आप लोग हमको कृष्ण भजन की उत्सुकता और प्रेरणा देते हैं, आपके देखने से हमको कृष्ण कथा कहने की लालसा होती है, उनको प्रणाम करते हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए, क्या रूपानु क्या है, अर्थात हमारे भजन का क्या लक्ष्य है, रूप गोस्वामी का चरित्र कैसा है, कैसे भजन करते थे, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी कैसे भजन करते थे। उस भजन को हम प्रणाम करते हैं, किंतु थोड़ा सी थोड़ी थोड़ी लालसा जगती जाएगी, यही लालसा भक्ति राज्य का मूल चीज है। इसलिए भक्ति दो प्रकार की, एक शास्त्र शासनमयी और दूसरी होती है हरि कथा इत्यादि श्रवण करके लोभमयी होती है। लोभमयी जगत में बहुत दुर्लभ रेयर है, तभी भजन करते 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 एक थोड़ी सी जरूर लालसा होगी वैष्णव की कथाओं को सुन करके, कैसे कृष्ण की सेवा की जाए। कल जैसे चर्चा चल रही थी उसमें लोगों ने बताया, जैसे हमारे गुरु जी कहते थे, मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं राधा जी को नहीं जानता, मैं चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं जानता है। ये लोग हमारे सिख पर रहे, हमारे गुरु जी ने इस पाषंडी को चोटी पकड़ करके विश्व से, ये नरक से उद्धार करके, मैं उनको जानता हूं, उनके माध्यम से सबको मैं पहचानूंगा, ऐसा अनुभव होना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जी की विराती थी कल थी, उनके चरणों में हम निवेदन करते हैं कि हम लोगों का किसी दिन सौभाग्य हो जो हमारे मन में ये लालसा जगे। रूपानु किसको कहते हैं, राग किसको कहते हैं, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए थे, चैतन्य महाप्रभु का जो अनर्पित चरण चिरा, इसका क्या तात्पर्य हमारे हृदय में कब स्फूर्ति प्राप्त होगी। हे गोस्वामी जी, आप चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। यहां तक कि सनातन गोस्वामी जी ने उनको गुरु के रूप में प्रणाम किया है, क्यों, क्या कारण था। इसलिए जिस समय की सनातन गोस्वामी बंदीशाक वहां पर थे मालदह जिले में रामखेड़ी ग्राम में, और उस समय में रूप गोस्वामी एक पत्र दिया, पोगता मथुरापुरी, मथुरापुरी आज कहाँ चली गई, अयोध्या कहाँ चले गए, कहाँ गई ओ कौशला कौशलापुरी, और हम चंद्र और ये सब लोग कहाँ चले गए, पांडव लोग कहाँ चले गए। और उसमें भी सूत्र में लिखा क र इत्यादि लिख दिया चिट्ठी में और लेकर के दे दिया, कोई नहीं इसका अर्थ समझा। सनातन गोस्वामी जी हुई उस पत्र को खोला और देख करके, चेचेसारी ये तो हमको वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए सुनते ही बस झट संकल्प कर लिया, आज अब राजा की नौकरी नहीं करनी है उस जैन बादशाह, और झट वैराग्य प्राप्त करके उससे। यद्यपि नित्य सिद्ध परिकर हैं तभी हमारी शिक्षा के लिए वैसा दिखलाते हैं। इसलिए उसी समय से राज्य का छोड़ दिया, बादशाह नाराज होकर के उनको जेल में बंद कर दिया। और कैसे छूट करके आए, रूप गोस्वामी की बहुत सहायता से उन आए। उन्होंने कितनी लाख मुद्राएं सोने की जेलर के सामने रख दिया। यदि रूप गोस्वामी ऐसी व्यवस्था नहीं किए होते तो काजने सनातन गोस्वामी को कितने दिन तक जेल में रहना होता, क्या होता। दूसरी बात, पुरी में जबकि नंदी श्लोक पढ़ रहे थे, यहाँ पर किस स्वरूप दामोदर राय रामानंद सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे दिग्गज विद्वान लोग थे और नंदी मुखी कोई विदग्ध माधव या ललित माधव का पढ़ रहे थे, कौन ग्रंथ लिख रहे हो, स्वरूप दामोदर जी ने पूछा। उस समय में नर्क चरिंग खिरात जब श्लोक उच्चारण किया, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। महाप्रभु जी ने कहा, अरे ये बहुत सुंदर तो लिखा है किंतु इसमें थोड़ा सा विष क्यों लगा दिया। स्वरूप दामोदर जी कहा, जी ये विष नहीं, ये तो इसमें घने दूध में और जोड़ दिया, न जाने क्या कर्पूर जोड़ दिया, ये बहुत सुंदर है। सनातन गोस्वामी जी सब सुने, जब कौमार हरम इत्यादि का तात्पर्य जब प्रियम स्वयं सहचरी इत्यादि जब जब उन्होंने सुना गदगद हो गए। देखिए जी, महाप्रभु जी की ये सब भावनाओं को कैसे ये धारण कर लेता है। स्वरूप दामोदर जी इत्यादि जी ने कहा, आपकी कृपा नहीं होने से कोई नहीं समझ सकता। यद्यपि स्वरूप दामोदर राय रामानंद कैसे लोग थे, ललिता पिशाचा जी के कही जाती है और बड़े सब लोग थे, किंतु महाप्रभु जी ने इनको ही क्यों वर्ण किया और ये श्लोक क्यों आया। चैतन्य मनोभीष्टम इत्यादि अथवा जो कवि कर्णपुर जी ने लिखा, ये सब श्लोक किस लिए लिखा। सचमुच में महाप्रभु जी के सारे भावों को रूप गोस्वामी जानते थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर नित्य परिकर ये जो रूप गोस्वामी हैं उनके स्वरूप हैं, प्रेम के स्वरूप है, एक तान है, ऐसे जो रूप गोस्वामी हैं उनके चरणों में आज हम भिक्षा मांगते हैं, वो हम सब पर कृपा करें। जे उनके इन सब चीज़ों को कभी किसी जन्म में समझकर अनुभव करके उनके चरणों का अनुगामी हो सकें, उनकी चरण की किंकरी उनकी चरण धूलि को अपने हृदय में धारण कर सकें, यही वंदना करके मैं आज वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अभी आरती होगी, आरती के पश्चात में
कृपा सिंधुभ्येव पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महापतन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाहि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना विन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदं। भजामि राधामरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मनुस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गति कापि।
एकासी से ही शिलरूप गोस्वामी के संबंध में बतला रहे हैं। रूप गोस्वामी की शिक्षाएं क्या हैं, उनका जीवन चरित्र कैसा है, किस रूप में हम लोग भजन करके
ब्रज भक्ति को पा सकते हैं, इसके संबंध में हम लोग बोल रहे हैं। अभी मैं पीछे बोलूँगा, पहले नवीन कृष्ण जी लो अब मुख से पाँच दस मिनट अधिक नहीं, पाँच मिनट रूप गोस्वामी के संबंध में श्रवण किया। कल परसों से ही वक्ता लोग उनके विभिन्न प्रकार के वैशिष्ट्यों पर बोल रहे हैं। रूप गोस्वामी का जीवन ही उनकी शिक्षा है। एक एक विषय पर हम लोग विचार करेंगे तो देखेंगे, साधारण साधारण बातों में भी देखते हैं। रूप गोस्वामी जी राधा दामोदर मंदिर में, उस समय राधा दामोदर मंदिर नहीं था, सेवा कुंजी भजन कुटी में बैठे हैं और कुछ लिख रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा उनकी सेवा में है, वो कौन है? जी कृष्ण वल्लभाचार्य जी घूमते घूमते आ रहे हैं। कजे रूप जी आप क्या लिख रहे हैं? इनसे पहले से ही उनका परिचय है, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में अड़ाल ग्राम में ये गए थे, उस समय से ये जानते हैं। वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी से भी उम्र में बड़े हैं जागतिक दृष्टि से, इसलिए रूप गोस्वामी के प्रति कुछ स्नेह रखते हैं। उन्होंने कहा जी ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, ठीक है जब हो जाएगा तो हमको दे देना संशोधन के लिए। अजय बहुत अच्छी बात, ये नहीं देखा कि मैं कोई भूल नहीं कर सकता, ये नहीं कहा, उनको यथायोग्य सम्मान देकर के विदाई किया। किंतु जो छोटा सा बच्चा है वो कैसा है? हमारे संप्रदाय का गौरव है। जी गोस्वामी घड़ा ले लिया और उनके पीछे पीछे चल पड़े जमुना में, वो गए तर्पण करने के लिए, उनके पीछे पीछे घड़ा लेकर के पहुंचा। और कैसे कहा जी तुम वहीं पर बैठे थे ना? तो हाँ बैठा था। तो आपने उनकी मैं भूल क्या देखा? तो उन्होंने कुछ प्रश्न इत्यादि किए और उसका समुचित उत्तर दिया और वहीं पर तर्क वितर्क होने लगा। बल्कि यही प्रश्न पूछा कि भक्ति मुक्ति स्पृहा जाऊत पिशाची, उन्होंने कहा जैसे ये पिशाची उन्होंने क्यों लिख दिया? मुक्ति पिशाची नहीं बल्कि मुक्ति की इच्छा। रूप जीव गोस्वामी ने कहा मुक्ति पिशाची नहीं है, किंतु मुक्ति की इच्छा के लिए भक्ति का परित्याग करना और वो निकल जाती है पिशाची। इसलिए तर्क वितर्क में जीव गोस्वामी ने उन्हें परास्त कर दिया और वो लौट करके आकर के क्षमा मांगा। तो ये फिर चले जब गए तो जी गोस्वामी को बुलाया, बुलाया तुमने क्या किया? एक वैष्णव एक ब्राह्मण उसको सम्मान देना उचित है ना? तुमने सम्मान नहीं दिया। जी गोस्वामी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ पर दो विचार, शिष्य का कर्तव्य वही है कि गुरु के प्रति यदि कोई अपशब्द बोले या उनके विचारों का खंडन करे तो सत शिष्य उसका उचित खंडन कर गुरु के विचारों की प्रतिष्ठा करे। इधर में रूप गोस्वामी ये देख रहे हैं कि त्रिनादपि सुनिच होना चाहिए, अपने शिष्य का शासन किया, शिष्य के तरफ से भी ठीक है और गुरु के तरफ से वही ठीक है जी। गोस्वामी का कोई दोष नहीं, किंतु रूप गोस्वामी जी शिक्षा दे गए। साधारण साधारण बात होगी, कोई भजन कर रहे हैं और कोई खंज कृष्णदास जी आए, रूप गोस्वामी में समाधि में भजन करते करते कृष्ण लीला का चिंतन करते करते देखा कृष्ण की अटपटी लीलाओं को और वो हंसने लगे और उन्होंने सोचा जी हमको लंगड़ा देख करके ये रूप गोस्वामी भी हमसे दिलगी करते हैं और हंसते हैं। उन्होंने मन ही मन में कुछ सोचा जी हमारे प्रति ऐसी इनकी धारणा, बस वहाँ से लौट गए और कुछ असंतुष्ट हो। रूप गोस्वामी ने कुछ दिखलाया मानो हमने कुछ अपराध कर दिया, इसलिए भगवान का लीला चिंतन नहीं हो रहा। उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा हमारा भजन में मन नहीं लग रहा है, तो क्यों कुछ गड़बड़ हो गई? कहाँ गड़बड़ हुई? अच्छा जी गोस्वामी कहा जी सब वैष्णव को निमंत्रण दे आओ। सब वैष्णव लोगों ने निमंत्रण ग्रहण किया, किंतु खंजे जो कृष्णदास थे नहीं ग्रहण किया। मैं कहा जी मैं नहीं जाता, हमारी दिल लगी उड़ाते हैं, मैं लगड़ा हो गया तो क्या हुआ, मैं भजन नहीं करता, हमको देख करके हंसी उड़ाई उन्होंने। सनातन गोस्वामी जी सुन करके बोले चलो वहीं पर चलना है, वहीं पर अपराध कुछ हुआ है। जा करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को देखा, हाथ जोड़े हुए देख करके बस हृदय उनका द्रवित हो गया, उनके चरणों में गिर गए। रूप गोस्वामी ने कहा जी मैंने हंस दिया था शायद,